अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी इदारे सेहत ने अमरीका में कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाली सेहत अहमा की सूरत हाल को खतरनाक करार दिया है। WHO के इमरजेंसी रिस्पॉन्स डायरेक्टर माइक रियान ने पीर को ब्रीफिंग के दौरान अमरीका में रिपोर्ट होने वाले केसेस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाले केसेस का एक तिहाई अमरीका में रिपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा अमरीका में तेजी से फैल रही है और ये देखकर हैरान है कि हर गुजरते मिनट में 1 से 2 अमवात हो रही हैं। रियान ने कहा कि यह सूरत हाल उस मुल्क की है जहां सेहत आमा का निजाम मजबूत है और जो जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी रखता है। अमरीका में हालिया चंद हफ्तों के दौरान हस्पतालों में रिकॉर्ड मरीज दाखिल हुए हैं जिससे हस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद और शुमार के मुताबिक अमरीका में कोरोना वायरस के लगभग 1.5 करोड़ केसेस और 2,83,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमरीका में मुतअद्दी अमराज के सबसे बड़े माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने खबरदार किया है कि मुल्क में हॉलीडे सीजन के दौरान सफर में कमी न की गई तो जनवरी का वस्त अमरीका में स्याह तरीन दौर होने का खदशा है। वो न्यूयॉर्क के गवर्नर की प्रेस ब्रीफिंग में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि थैंक्स गिविंग पर सफर और मेलजोल के असरात 1.5 हफ्ते तक नुमाया होंगे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त क्रिसमस का मौका आ चुका होगा जिस दौरान मजीद लोगों के सफर करने से जनवरी के वस्त तक कोरोना इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है। उनका कहना था कि 70 या 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन के बाद ही इतनी कुव्वत मुदाफियत पैदा की जा सकेगी कि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने आज 8 दिसंबर को वी डे यानी वैक्सीनेशन डे करार देते हुए इसे बरतानवी तारीख में टीका जात का सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा है। बरतानिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां अमरीकी और जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के इश्तराक से बनाई जाने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। इतवार को मुल्क भर के अस्पतालों में वैक्सीन की सप्लाई पहुंचा दी गई थी जबकि आज से उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। कोरोना वायरस से बचाव के साजो सामान की मांग में इजाफे के सबब चीन की बरामदाद में तेजी देखने में आई है जो नवंबर के महीने में बढ़कर गुज़श्ता 2 सालों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में नवंबर में चीन की मसनूआत की बरामदाद में 21.1% का इजाफा हुआ। पीर को जारी होने वाले आदाद और शुमार के मुताबिक ये इजाफा 12% की मुतवक्के शरह से कहीं ज्यादा रहा। अक्टूबर में चीनी बरामदाद में 11.4% इजाफा हुआ था। साथ ही चीन की दरामदाद में नवंबर में 4.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कौमी खतरा है। वो सदारती महल में COVID-19 की इंतजामिया के साथ वायरस की दूसरी लहर के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना के दूसरी लहर के दौरान मुस्बत टेस्ट की शरह 8.5% हो गई है। पाकिस्तान में हालिया सर्वे और हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से पैदा शुदा माशी सूरत हाल के दौरान तकरीबन 1.9 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। एक जानिब जहां सनतकार और ताजिर इसकी वजह कोरोना वबा के अलावा मुल्क में महंगी बिजली और गैस के बहरान को करार देते हैं तो दूसरी जानिब माशी माहरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बेरोजगारी की इस तारीखी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा घराने गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाने का खदशा है। माशी माहरीन ने सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत को मजीद माशी पैकेजेस देने के साथ टैक्सेस में रियायत का मशवरा दिया है। पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ के जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क्यादत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए जारी एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले पर गौर के लिए इस्लामाबाद में जमा है। इस सरबराही इजलास में एहतजाजी तहरीक के लाहौर में इख्तितामी जलसे की हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। PDM में शामिल बाज जमातों ने असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी इंदिया दे रखा है। खबरें खत्म हुईं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, एक झलक सुनते हैं।
यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, किसान भाइयों से मिलना ना हुआ, वापस पुलिस वालों, किसान की बेटी, किसान की बहू, हम भी तो किसान है। मेरा किसान हमारा अभी तो हमें जवानों के बराबर ताकत है बोलने की, चलने की, बात करने की, पांच मंजिल चढ़ने करने की, हम तो हारे ही ना, अभी ना हारा, इंशाल्लाह पूरी जान लगा देंगे।
हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ भारत में जारी एहतजाज और किसानों का 8 दिसंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। पीर के रोज़ जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत में मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज गुज़श्ता 11 दिन से जारी है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत ने जो 3 ज़रई क़वानीन मंजूर किए हैं उन्हें वापस ले, अनाज मंडियों को ख़त्म न करे और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा अनाज की कम से कम सपोर्ट प्राइस, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP कहा जाता है, उसे कायम रखने के लिए कानून वजा किया जाए। आप MSP की इस इस्तेलाह को याद रखिएगा, क्योंकि इस गुफ्तगू के दौरान हमारे माहरीन कई बार इस इस्तेलाह का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वजाहत भी करेंगे। किसानों ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो 8 दिसंबर को मुकम्मल भारत बंद हड़ताल की जाएगी। तो आज 8 दिसंबर को जब ये प्रोग्राम नशर हो रहा है, जो कुछ आज के दिन हुआ है वो आप हमारे न्यूज आवर में और खबरों में सुन रहे होंगे, लेकिन बहरहाल अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसके लिए हमने जिन मेहमानों को मदु किया है उनमें पवन खेड़ा साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान हैं, और इस वक्त इस एहतजाज से मुतालिक जो भी ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो पवन खेड़ा साहब ही करते हैं। राजीव पांडे साहब एक मुमताज तजियाकार और BJP पैनलिस्ट हैं, वो नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मौकिफ की। डॉक्टर आशीष मित्तल साहब ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि इस वक्त जो तहरीक चल रही है उसमें उनकी तंजीम का बहुत बड़ा रोल है। पंजाब से जो लोग आए हैं उनमें इनकी तंजीम के लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष राबता कमेटी की एक रुकन तंजीम है जिसने इन 3 ज़राई क़वानीन के आने के बाद मौकिफ इख्तियार किया था। दूसरे किसान मजदूर रहनुमा अतुल कुमार अंजान साहब हैं, एक लंबे अरसे तक उन्होंने भारत के तलबा और नौजवानों के दरमियान काम किया है, उसके बाद उन्होंने किसानों के दरमियान काम करने का आगाज किया और हिंदुस्तान की सबसे पहली बड़ी तंजीम ऑल इंडिया किसान सभा के एक दिहाई से जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा एक बहुत प्यारी शख्सियत से भी मैंने बात की है, ये हैं शाहीन बाग की दादी, नाम इनका बिल्किस बानो है लेकिन ये शाहीन बाग की दादी के नाम से मारूफ हैं, और अमेरिका के मौकर जरीदे टाइम ने उन्हें साल की सबसे ज्यादा बासर 100 शख्सियात में शामिल किया है। 82 साल बिल्किस बानो ने, जिन्हें दादी के नाम से जाना जाता है, सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों के धरने की हिमायत करने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों, उन्होंने मुझे बताया।
यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, किसान भाइयों से मिलना ना हुआ, वापस पुलिस वालों।
अच्छा, तो दिल्ली से बाहर ही नहीं जाने दिया?
आराम से बैठ गए गाड़ी में, हमारे साथ लेडीज भी जब जा रहे थे, जब हमारे हमने कही हम किसानों से मिलेंगे, उन्होंने कही तुम्हारी उम्र ज्यादा है, कोरोना हो जाएगा, तुम सीधे घर चली जाओ, तो उन्होंने बैठा कर हमें थाने पर छोड़ दिया।
हिमायत करने का क्यों सोचा किसानों की?
किसान की बेटी, किसान की बहू, हम भी तो किसान हैं, 100 बीघे जमीन है, बिजली का कुआ है, बाग 40 बीघे बाग है उसमें, अब किसान ना और कैसे, हापुर से 12 किलोमीटर है पुराना हमारा गांव, तो वहाँ के रहने वाले बहुत बढ़िया लगता, 25 साल हमारे देवर ने प्रधानी करी, 10 साल हमारी बहन ने करी, हमें पहले से जाना है दुनिया।
क्या उगाते हैं आप लोग?
मूंगी भी होती है, गेहूँ भी होते हैं, आलू होते हैं, आम 40 बीघे आम है।
तो इस वक्त जो हुआ है मामला, जो कानून मंजूर किए गवर्नमेंट ने, इससे क्या नुकसान होगा किसानों को?
लेते हैं तो 8 रुपए कुछ लेते हैं, और जब बनियों का चला जाए तो 20-22 किलो बेचते हैं, तो किसानों को तो सारा नुकसान है, वो वहाँ जोता है, पानी दे, खाद डाले, बीज डाला है, जब जाकर खेती वो है क्या, नहीं छोड़े उग जा, फिर जब उसे 8 रुपए किलो लाएंगे तो अपने बच्चों को हम क्या खावा थे, अब जो ज्यादा पैसे वाले वे खरीद रहे, जो गरीब भाई है ये भूखे मर रहा है, तो यू नुकसान तो किसानों का भी है, मजदूर का भी है, नौकरी नहीं बच्चों को,
تو کیا ارادہ کیا ہے آگے کسانوں کے لیے کیا کریں گی؟
تو ہم تو یہ کریں گے یہ کالا قانون جو لائے ہیں انہیں واپس کر لیں, اور اتنی مہنگائی ہے آلو 50 روپے کلو بک رہے ہیں, پیاز 50 روپے کلو, ہمارا آتا ہے تو 8 روپے کلو لیتے ہیں, اپنا آتا 20-22 کلو 50 روپے کلو دیتے ہیں, تب کسانوں کو تو سارا ہی چھوٹا میسر لیں گے پمیسر لیں گے, جانے کی جگہ تو جان دیں گے, ویسے کیسے جان دے رہے ہیں, ہاتھ رس میں جو ہوا تو وہاں بھی ہم نے بہت کوشش کری نہ جان دیا, ہاں عمر ابھی تو ہمیں جوانوں کو ضرورت طاقت ہے بولنے کی چلنے کی بات کرنے کی 5 منزل چڑھنے اترنے کی, ہم تو ہارے نہ ابھی نہ ہارا, ان شاء اللہ پوری جان لگا دیں گے.
یہ ہے شاہین باغ کی دادی, اور اب چلتے ہیں آج کے ڈسکشن کی جانب. میں پون کھیڑا صاحب سے اب جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے کہ یہ جو اندولن یا جو احتجاج ہے اس وقت, تو اس میں کانگریس پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے کسانوں کے مسئلے کو, تھوڑا سا آپ اگر ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ جو 3 متنازع زرعی قوانین ہیں ان میں سب سے زیادہ جو جس بات پہ اعتراض ہے اور جسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پون کھیڑا صاحب,
کانگریس پارٹی ستا میں جب ہم تھے تب بھی, خاص طور پہ میرے نیتا راہل گاندھی جب یو پی اے کی سرکار تھی تب بھی کسانوں کے ہت میں ان کے پکش میں ان کے حق کی بات آواز بڑی بلند کرتے رہتے. اب پچھلے کچھ مہینوں میں پنجاب میں ہریانہ میں الگ الگ حصوں میں دیش کے, حالانکہ کووڈ کا ایک سنکٹ سب جگہ چل رہا ہے, لیکن پھر بھی راہل جی نے جا کر کسانوں کے بیچ کھڑے ہو کر ٹریکٹر ریلیاں کی, کسان سمیلن کیے, اور ان کے جو بھے تھے ان نئے قانونوں کو لے کر ان بھیوں کو سمجھا, ان کو آواز دی, ان سے بات چیت کی. جو سب سے بڑا اس میں دقت کسانوں کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اے پی ایم سی کا سٹرکچر ہے, اے پی ایم سی ایک منڈی کی جو ویوستھا ہے اس ویوستھا کے تحت کسان اپنی اپج لے کر منڈی میں جاتا ہے اور وہاں بولی لگتی ہے اس کی اپج پر, اور ایک بینچ مارک پرائس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ستھاپت ہوتا ہے. منڈی ویوستھا میں کئی خامیاں ہیں, اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے, شک نہیں ہے, وہ خامیاں دور ہونی چاہیے, یہ بات ہم بھی کوشش کرتے آئے ہیں کہ خامیاں دور ہوں, لیکن منڈی ویوستھا کو ہی آپ ختم کر دیں تو اس کے ساتھ انیک سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک, آپ منیمم سپورٹ پرائس کہاں دیں گے؟ اور بھائی میں جب کہتا ہوں منڈی ختم ہو جائے گی تو بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے صاحب ہم نے تو کہیں نہیں لکھا منڈی ختم ہو جائے گی, تو میں تھوڑا اس میں خلاصہ دینا چاہوں گا. منڈی ویوستھا میں منڈی پر ایک مارکیٹ فیس لگتی ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ لگتا ہے, یہ دونوں فیس کوئی کسان کو اپنی جیب سے نہیں دینی ہوتی, یہ بائر کی جیب سے جاتا ہے. لیکن جو نئی ویوستھا لائی جا رہی ہے اس میں نہ تو کوئی مارکیٹ فیس لگے گی, نہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ لگے گا, کوئی چارجز لگیں گے, کچھ نہیں. نمبر دو, کون سی فصل کتنی فصل کس نے خریدی اور کتنے میں خریدی, اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی وبھاگ نہیں ہوگا, کیونکہ کسان کے کھیت پر کوئی لالا جائے گا, سیٹھ جائے گا یا کوئی ایجنٹ جائے گا, وہ وہیں چپ چاپ مول بھاؤ کر کے آ جائے گا, نہ کوئی بینچ مارک پرائس ہوگا, نہ سرکار کی کوئی دیکھ ریکھ ہوگی. یہ سب سے بڑی سمسیا ہمیں ان 3 نئے قانونوں میں ہے. نمبر دو, جو کانٹریکٹ فارمنگ ہے, اب آپ بتائیے 86% کسان اس دیش کے 2-5 ایکڑ زمین کے مالک ہیں, ان سے آپ کیسے امید کرتے ہو کہ وہ بڑے بڑے سیٹھوں کے سامنے اپنے ایگریمنٹ, اپنے کانٹریکٹ, اپنے حق کے لیے لڑ پائیں گے؟ آپ نے اس قانونوں کے تحت یہ بھی کر دیا کہ سول کورٹس میں نہیں جا پائیں گے کسان. کون سا کسان ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ایس سی ایم کے دروازے پہ جا کر اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتا ہے, وہ بھی ایک چھوٹا کسان. یہ ہماری بریفلی جو میں آپ بتا رہا ہوں,
جی
ہماری
بالکل
ان قانونوں میں سمسیا ہے.
بہت شکریہ. اور اب میں, آپ نے بی جے پی کی بات کی اور بی جے پی کی جانب سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجیو پانڈے صاحب موجود ہیں. راجیو پانڈے صاحب, اس میں جو آپ جواب دینا چاہیں پون صاحب کی بات کا, لیکن ساتھ ساتھ میں جو خاص طور پہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ کسان جو یہ بات کہتے ہیں کہ ان قوانین سے کانٹریکٹ فارمنگ کا دور شروع ہو جائے گا جو کسانوں کے مفاد میں نہیں ہوگا, تو اس کے بارے میں پوزیشن جو ہے پارٹی کی کیا ہے؟
پہلے تو میں پون کھیرا جی کی باتوں کا ریسپانس کے بعد میں آپ کو جو کانٹریکٹ فارمنگ پر آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں اپنی بات رکھوں گا.
ٹھیک ہے,
دیکھیے آپ نے بہت ہی پن پوائنٹڈ سوال پوچھا पवन खेरा जी से कि क्या रियल में इशू क्या है, तो उन्होंने दो तीन बातें की कि एमएसपी जो है वो किसान लाला जाएगा और जाकर के फार्म पर बात करके वहीं से चला जाएगा और कम दाम में खरीद लेगा। किसान को पता है कि एमएसपी के लिए एक मंडी है, अगर उसको एमएसपी से कम प्राइस मिलेगा तो वो उस लाला को क्यों देगा। आज वो अपनी सारी जो फसल है वो उसको मंडी तक लाता है और मंडी पर लाने के बाद वो वहां बेचता है। अब जो पेरिशेबल गुड्स है उसका जो सिस्टम है, क्या हमारे यहाँ सिस्टम है जो वहाँ अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या जहाँ एपीएमसी का मार्केट है वहां पर ला करके वो अपने सबसे अच्छी जो उसकी प्राइस है उसको ले सकता है। अभी जो ये पूरा का पूरा जो तीनों जो है ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो रिफॉर्म किया था इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये एग्रीकल्चर लेवल एग्रीकल्चर में उसी के टक्कर का यह रिफॉर्म है। मैं कह रहा हूँ 2019 में जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी की, 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने ये सब बातें लिखी हुई है। पवन खेरा साहब ने माना कि मंडी व्यवस्था में बहुत सारी खामी है, उसी खामी को दूर करने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया है। और इनके नेता मैं कपिल सिब्बल साहब का पार्लियामेंट में भाषण है कि मंडी व्यवस्था में क्या खामी है और किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इन्होंने खुद कहा कि मंडी व्यवस्था में 8.5% आज के दिन में, जीएसटी से पहले 14% था, आज के दिन में पंजाब में 8.5% 3% जो मंडी टैक्स है, 3% आप रूरल डेवलपमेंट सेस लगाते हैं और 2.5% कमीशन एजेंट की बात है। किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? आप रूरल डेवलपमेंट में उसका खर्चा नहीं करते, उसका उपयोग आप कुछ और करते हैं। देखिए ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है और आज ये बार बार कहते हैं कि हम पूरे ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। 1.80 लाख करोड़ के डेट में एफसीआई है, किस कौन पे जिम्मेवार? आप मंडी सिस्टम से जो एपीएमसी का मोनोपोली है ये सरकार उसको तोड़ना चाहती है, किसान को अधिकार देना चाहती है कि आप चाहे तो अपना माल एपीएमसी में आकर के बेचें, लेकिन अगर आपको एमएसपी से ऊपर कहीं भी और प्राइस मिल रहा है आप बेच सकते हैं। आज क्या परिस्थिति है, क्या बदलाव हुआ है इस पूरे एक्ट से? एक ही बदलाव हुआ है कि मंडी की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने की कोशिश है और मंडी की मोनोपोली से जो बीज के जो एजेंट है, जो फार्मर प्रोड्यूसर 2 रुपए किलो गाँव में आलू बिकता है और शहर में वो 40 रुपए हो जाता है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आप 8.5% सरकार भी देती है। तो पवन खेड़ा जी के पूरे में वो ऑलमोस्ट इससे सहमत दिख रहे हैं मुझे, लेकिन क्योंकि कल तक तो उन्होंने कोई विरोध किया नहीं, अब क्योंकि किसान आ गए हैं और उनका कुछ है तो वो आज विरोध में आ रहे हैं। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है ये विलिंग किसान के लिए है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि हर किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कराना है, जो खुद कर रहा है वो क्यों जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? मैं खुद किसान का बच्चा हूं, मैं लॉ पढ़ता हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन हम तो किसान से निकले, हम तो सारी खेती अभी भी गांव होके आए, वहां मैं बिहार से आता हूं, वहां एपीएमसी 2006 में चली गई। आज इस मंडी मोनोपोली की वजह से जो पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से जो परचेजिंग हो रही है उससे हमारे यहाँ का प्राइस दब गया बिहार में, क्योंकि वो यहाँ से लेते हैं और सरकारी सिस्टम से वो 2 रुपए किलो अनाज बांट रहे हैं। देखिए बहुत सारी इश्यूज है इसमें और मेरा मानना है कि ये जो तीनों एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट है उसका तो बहुत ज्यादा लोग विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक लिमिट और प्राइस लिमिट के बारे में है। जहां तक एपीएमसी की बात है, सरकार ने कई बार कह दिया कि हम एमएसपी को नहीं हटाने वाले, इतना बड़ा डिबेट हो गया, आपको लगता है कि जो सरकार पार्लियामेंट में कह चुकी है, बाहर कह चुकी है कि हम एमएसपी को नहीं हटाने वाले हैं, वो हटा देगी और लोग चुप बैठेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट फार्म की जहां तक आपने बात की, ये कोई मैंडेटरी थोड़ी है, जहां पर जिनको सूट करेगा वो करेंगे।
मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें जो होती नहीं है किसी कानून में, लेकिन ये कि उसकी वजह से वो अमल में आती हैं, तो ये खदशात जाहिर है कि किसी भी मुल्क में जब कोई नए कानून मुतारिफ किए जाते हैं तो इस तरह के खदशात मौजूद होते हैं। मैं डॉक्टर मित्तल से अब ये बात पूछना चाहूंगी, वैसे तो वो इसमें जो भी जवाब देना चाहे, लेकिन ये जो बात कही पांडे साहब ने कि मंडी की जो है मोनोपोली को खत्म करना इसका मकसद है, तो क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये मकसद है इसका, मंडी की मोनोपोली को खत्म करना और वो हो जाएगी खत्म?
शनाज जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सवाल को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का सवाल बनाना चाहते हैं। ये सवाल किसान बनाम कॉरपोरेट का सवाल है। जो दो कानून लिखे हैं दोनों के प्रियम्बल में शुरू में ही ये बात लिख दी है कि इसमें कॉरपोरेट घरानों को, बड़े खरीदारों को और कंपनियों को स्थापित किया जाएगा। जो मंडी कानून था एपीएमसी का, उसमें बड़े खरीदार वर्जित थे, क्योंकि बड़े खरीदार खरीद में मोनोपोली पैदा करते थे और रेट को गिरा देते थे। किसान एक ऐसा मजबूर इंसान है जिसकी फसल जिस समय होती है उस समय खरीदार जो भी रेट देगा उसको बेचनी ही होती है, क्योंकि वो कर्जे से लदा है, उसको अगली फसल बोनी है। इसकी सुरक्षा के लिए मंडी कानून बना था। जो कानून बीजेपी ने बनाया है एपीएमसी वाला, एपीएमसी बाईपास कानून हम लोग कहते हैं उससे, उसमें लिखा है कि निजी मंडियां को लीगल राइट मिलेगा। तो ये जो बिहार का एग्जाम्पल है ये एकदम अनरिलेटेड एग्जाम्पल है। एपीएमसी फंक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी कंपनियों को, कारगिल, ड्रियफूस, एडीबी, रिलायंस, अंबानी को आप अधिकार दे दें कि आप खुद मंडी लगा लें और उसका लीगल राइट हो, ये जो है अलाउड नहीं था उस कानून के अंदर। अब जो है ये लीगल राइट दे दिया गया है, और अब इस लीगल राइट में, इसके कानून में लिखा है सेक्शन 426 के बीच में कि जो रेट डिसाइड होगा वो रेट ई ट्रेडिंग से डिसाइड होगा। गवर्नमेंट लिख सकती थी कि जो रेट डिसाइड होगा वो एमएसपी से डिसाइड होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने मंडी से नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ने लिखा है साफ साफ कि वो ई ट्रेडिंग के रेट से, यानी सबसे लोअर रेट डिसाइड होगा। जाहिर बात है कि कंपनियां लोएस्ट रेट पर खरीदेंगी। दूसरा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लिख रहे हैं कि ये विकल्प है और किसान ना चाहे तो ना करे, ये एक पूरी मोनोपोली की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि इसमें बिचौलिए नियुक्त होंगे जो जमीन का एग्रीगेशन करेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से ये काम कराया जाएगा, इनकी अपनी मंडी के निजी टैक्सेशन होंगे, और ये लागत के दाम, किसान तो बहुत सारा प्रोत्साहित होता है हिंदुस्तान में, कॉटन से लेकर तमाम फसलों के लिए प्रलोभित करके लोगों को जो है खेती कराई गई, महंगे बीज खाद बेचे गए और लोगों ने आत्महत्या करी। जितनी जल्दी बीजेपी गवर्नमेंट इस बात को समझ ले कि 1991 की पॉलिसी से पहली बार भारत के अंदर 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अब वो सीधे तौर पर इसको जो है यहाँ पर खेती में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट के उन तमाम तर्कों को खारिज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि इस कोरोना पीरियड में खेती 3.4% से बढ़ी है, ये पुराना ही ग्रोथ रेट है, और ये इसलिए बढ़ पाई क्योंकि कॉर्पोरेट का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि नई व्यवस्था ला रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ मोदी जी के कि वो नई व्यवस्था ला रहे हैं, और ये नई व्यवस्था कॉर्पोरेट के कब्जे की व्यवस्था है जिसमें किसान उजड़ जाएगा, इसीलिए लाखों किसान उतर के आ गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का विरोध नहीं है, ये बिल्कुल आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में काला बाजारी और जमाखोरी करने पर रोक थी, 3/7 का केस चलता था। एसेंशियल कमोडिटी होती है वो जो जनता के जीवन के लिए जरूरी है, इन्होंने लिख दिया है अब खाना उसमें नहीं आएगा, अनाज, दाल, चना, चबेना कुछ नहीं उसमें आएगा। अब जो है उस पे हस्तक्षेप तभी होगा जब कोई विशेष परिस्थिति होगी या दाम पिछले साल से 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया है कि राशन के कानून तो लागू होंगे लेकिन जब तक लागू है तभी तक होंगे। इन्होंने साफ संकेत कर दिया है कि राशन व्यवस्था को भी चौपट कर देंगे। तो एक तरफ कालाबाजारी और जमाखोरी और कालाबाजारी को ये बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा 75 करोड़ राशन के लाभार्थियों को कंपनियों के सामने मजबूर करने के लिए, महंगा खाना खरीदने के लिए खोल रहे हैं।
अब मैं बात करना चाहूंगी अतुल कुमार अंजाम साहब से कि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ तो बातचीत के दौर हैं जो सामने आए हैं और पर्दे के पीछे भी, यानी ऐसी भी हुकूमत के और किसानों के नुमाइंदों की बातचीत हुई है जो मीडिया में जो सामने नहीं आई, तो एक तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जितने भी अदवार हुए बातचीत के उससे कोई ठोस बात सामने आई या नहीं आई, और दूसरे ये कि क्या जो इशू है इसके ऊपर जो किसान पार्टियां हैं उनमें मुकम्मल इत्तेहाद है या उनमें भी कुछ इख्तलाफ है।
मैं बहुत से सवालों का जवाब दे सकता था लेकिन कुछ बात आशीष मित्तल जी ने जो कह दी है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये तीनों कानून और ये बिजली कानून 2020 है, इसके चलते मुल्क के अंदर एक बड़ी हंगामेदारी जो है माहौल बन गया है, और मुझे مشہور شاعر مزرور سلطان پوری کا وہ شعر, وہ فلمی گانا ہے لیکن اس کا ایک شعر یاد آتا ہے جو ہندوستان کے کسانوں کو ہی مد نظر رکھ کر کے شاید انہوں نے لکھا ہوگا, اور وہ ہے کہ ہم ہیں متائے کوچے بازار کی طرح اور اٹھتی ہے ہر نگاہ یہاں خریدار کی طرح. یہ تینوں کے تینوں قانون اسی کی ترجمانی کرتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تین دور کی عوامی بات ہوئی اور دو دور کی بات پوشیدہ تھی اس کے بارے میں کچھ چلے گی. تین دور کی جو بات ہوئی اسی دور میں کیبنٹ کے تم کچھ منتریوں کے ساتھ پردھان منتری مودی جی نے بھی بات کر لی, اور ہندوستان کے ایگریکلچر منسٹر اور کامرس منسٹر نے تین دور کی بات چیت, اور ایگریکلچر سیکرٹری نے ہمارے کسان رہنماؤں سے یا کسان ریپرزینٹیٹو سے تمام تنظیموں کے طرف سے منتخب ان سے بات کر لی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایگریکلچر منسٹر نے اس بات کو مان لیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے, دو دو بار انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہم نے کسانوں کے رہنماؤں کی یا کسانوں کے نمائندوں کی بات سنی, اس میں بہت سی باتیں ہیں, نو باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں تبدیلی کے لائق ہے. تو آپ نے مان لیا, آپ کے پردھان منتری اور ہمارے پردھان منتری اور منتری تو کہتے اس میں تو کچھ گڑبڑی آئی نہیں, تو انہوں نے مان لیا. انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا کہ یہ جو ادھیکار ہے یہ جو اس کے اندر نہیں دیا گیا, کسان صرف ایس ڈی ایم کے کورٹ میں جاتے ہیں جا سکتے ہیں اور کہیں اوپر سول کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ نہیں جا سکتے, یہ جو بات کہی ہے ہم اس میں ترمیم کی بات سوچتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صاف ہو گیا جو ہم نے 33 نکاتی اپنی جو درج کرائی تھی کہ ہم اس سے سرکار کی ان باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس ایکٹ کے 33 پوائنٹ پر جو ہم نے پڈل پوائنٹ رکھے تھے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہم اس پر بات کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہو کہ سرکار کا یہ قانون خود سرکار کی نگاہ میں کوشچن مارک ہو گیا. اور ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں, 2013 سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار کے خلاف لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے خلاف ملک کے اندر ایک بہت بڑا کسانوں نے آندولن چلایا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ انگریزوں کے زمانے کا وہ ایکٹ اور اس کے اندر ایکٹ نمبر 4 جس میں ڈی ایم کو ادھیکار ہے کہ کسی کی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا ایک آرڈر کر کے, اس کا دام بھی طے کر دے گا. اس کی وجہ سے بہت آندولن ہوا اور پھر سرکار کو مجبور ہو کر کے ایک لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو بدلنا پڑا. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی, اس کی صدر وہ بی جے پی کی تھی جو بعد میں لوک سبھا کی اسپیکر ہوئی, اس کی تمام ریکمنڈیشن تھی, اس کے بنیاد پر 2013 کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہوا اور انگریز زمانے کے تمام قانونوں کو بدلا گیا. لیکن بڑی افسوس کیا, اس کو بی جے پی کے لوگ سپورٹ کر رہے تھے, تب چیف منسٹر تھے ہمارے پردھان منتری جی. مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر, جس کا ذکر ابھی ہمارے دوست نہیں کر پائیں گے, اڈوانی جی کی تقریر نکال لیجیے لوک سبھا میں, سشما سوراج کی تقریر نکال لیجیے لوک سبھا میں, راجیہ سبھا میں ارون جیتلی جی کی تقریر نکال لیجیے, روی شنکر پرساد جی کی تقریر نکال دیجیے کہ کتنا خراب ہے ایکٹ اور 2013 کا ایکٹ کتنا اچھا ہے. اور اس کے بعد اسی ایکٹ کو مودی جی نے ختم کر دیا, ایک آرڈیننس نکالا, پھر دوسرا آرڈیننس نکلوایا, پھر تیسرا آرڈیننس نکالا, دیش بھر میں ہنگامہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی, بی جے پی کے سانسد ایس ایس اہلوالیہ کی صدارت میں کمیٹی بنی, اس نے ریکمنڈیشن دیے, تو وہ خلاف جا رہے تھے مودی جی کے آرڈیننس کے خلاف, لہٰذا وہ آرڈیننس پھر دوبارہ نہیں لایا. آپ نے کسانوں کی بات نہیں سنی اور یہ تین قانون آ گئے. 8 لاکھ کروڑ روپے کا ہندوستان کا جو الیکٹرسٹی بورڈ کے راجیوں کے ہیں یہ سب کارپوریٹ کے حوالے ہو جائیں گے. اس لیے دیش کا کسان جاگ گیا ہے اور بنا ترمیم کے وہ واپس نہیں جانے والا ہے. یہ حق کارپوریٹ سے ہندوستان کی کھیتی کو بچانے کا, اور اس کا ایک آخری لائن میں میں کہوں کہ یہ نعرہ ہے, کھیتی بچاؤ, گاؤں بچاؤ, کسان بچاؤ, دیش بچاؤ, یہ ہے آندولن.
شکریہ اتل کمار انجان صاحب. میں واپس آؤں گی پون کھیڑا صاحب کے پاس. جیسے کہ ڈاکٹر متل نے کہا کہ یہ جو تنازع ہے وہ کانگریس پارٹی اور بی جے پی کا نہیں ہے بلکہ کسان اور کارپوریٹ کے درمیان ہے. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ یہ قانون ہے اور قانون تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کوئی بھی بل ہے جو منظور ہوتا ہے. اس میں جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں انہوں نے اس میں پروٹیسٹ کیا اور بیک آؤٹ کیا اور اس دوران جو ہے یہ قانون منظور کر لیا گیا. تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس پر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی, اس میں پھر باقی لوگوں کو بلایا جاتا؟ مطلب کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس قانون کو اس طرح جلدی میں منظور نہیں ہونے دیا جاتا؟ پون کھیڑا صاحب,
جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ بیچ کووڈ کے سنکٹ کے جون میں آرڈیننس کے راستے سے آپ یہ لے آئے, آخر کیا جلدی تھی, کیا مجبوری تھی, کیا دباؤ تھا, کس کا دباؤ تھا, पूरे देश का ध्यान कोविड पर था और हमारी सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर, किसानों की फसल पर और अपने जो तीन चार दोस्त हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, उनके हितों का पर ध्यान था। आपने ये ऑर्डिनेंस क्यों, वो रास्ता क्यों अख्तियार किया? और उसके बाद संसद में जब ये कानून बनाया जा रहा था, आपने विपक्ष को निलंबित कर दिया, संसद से बाहर कर दिया। संसदीय जो प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कांग्रेस, बिल्कुल कहा हमने, क्या कहा मैं बता देता हूं आपको। हमने कहा कि हर 2-3 किलोमीटर पे फार्म मार्केट होने चाहिए। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एपीएमसी खत्म कर दो, एमएसपी का नाम नहीं लिखो। हम आज भी कहते हैं कि हर नीति में समय समय पर सुधार होते रहने चाहिए। आप कहते हैं कि एपीएमसी की फीस जो है वो, अरे आपका तो हक ही नहीं है उस फीस पर। जो आपने ये कानून पास किया है ये गैर कानूनी तरीके से किया है, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रांतों की सरकारों का हक है उस फीस पर और उस डेवलपमेंट फंड पर। आप होते कौन है ये कहने वाले कि भाई खर्च नहीं और होता है? आइए पंजाब में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ खर्च हुआ, वो दिल्ली में कहाँ खर्च हुआ। मैं दिल्ली सरकार में 15 साल का हित में उसका हिस्सा था, हमें मालूम है वहां हमने कहाँ खर्च किया। तो इस तरह से गलत बयानी मत करिए कि कहाँ खर्च होगा। अब जब लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाएगी, एपीएमसी पर तो चार्जेस होंगे और जो निजी मंडी है उस पर चार्जेस नहीं होंगे, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी तो एपीएमसी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आप एमएसपी कहाँ देंगे मुझे बताइए? आप एमएसपी क्या किसान के खेत पर जाकर देंगे? कैसे देंगे? आपने बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में कई किसानों से मैं मिला इस चुनाव के दौरान, मालूम पड़ा वो दुखी है आपकी इस कानून से। जो आप 2006 में बिहार में लाए थे वहां सस्ते में खरीदा जाता है और बाकी देश में एमएसपी पे बेचा जा रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? बिहार के किसान को हो रहा है। आप कहते हैं कि हमारे सिब्बल साहब ने पार्लियामेंट में क्या बोला, मैं आपको याद दिला दूं, तो सुषमा जी ने जो आड़तियों के पक्ष में भाषण दिया, आप चाहें तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के राजीव जी मित्र है मेरे, मैं उनको भेज देता हूं वो भाषण, आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं हम बिचौलिए दूर कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आप बड़े बिचौलिए बीच में ला रहे हैं और वो भी ऐसे ला रहे हैं कि उन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई सरकारी देखरेख नहीं रहेगी। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, आप पूरे देश को समझा रहे हैं, विश्व को समझा रहे हैं कि ये कानून सही है, जिनके लिए ये कानून बने हैं वो इन्हें गलत मानते हैं। सबसे पहले तो उनकी बात कीजिए। नंबर दो, अकाली दल जो आपका अपना पार्टनर था, आज से नहीं दशकों से आपका पार्टनर था, आप उसको नहीं समझा पाए। नंबर तीन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप उनसे हामी करवा दीजिए, आप मोहन जी भागवत से कहलवा दीजिए कि ये तीनों कानून सही है, फिर उनसे बहस करते हैं, हम वो भी नहीं कह पा रहे। तो आप पहले तो, सबसे पहले तो किसानों को आप आश्वस्त नहीं कर पाए, क्यों? किसान मूर्ख तो नहीं है कि वो सड़क पर ठंड में 24 घंटे दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं, आप उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं? वो मूर्ख नहीं है, आप उन्हें नहीं समझा पाए। आप पहले उन्हें समझाइए, फिर हमसे बहस कीजिए।
शुक्रिया बहुत बहुत। और अब पांडे जी, अब आपसे मैं पूछूंगी, एक तो पहले जो खासतौर पे मेरा सवाल है वो अकाली दल से मुतालिक है कि अकाली दल अलग हो गई बीजेपी से इसी इशू पर, और एक दूसरी बात ये कि जाहिर है जो दो इलेक्शन जिनमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की उसमें आम तौर पर किसानों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी के हक में वोट दिए, तो जब इतना बड़ा एक तब्दीली लाई जा रही थी एक निज़ाम में, तो चाहे वो बेहतरी के लिए थी जैसा कि हुकूमत समझती है, लेकिन क्या इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं था कि पहले इन तमाम तंजीमों से, भारत में बड़ी मुनज़्ज़म है मजदूर किसान तंजीमें, उनसे कंसल्ट किया जाता, उनसे बात की जाती, उसके बाद ये कोई कानून लाया जाता? राजीव पानी साहब,
ऐसा है कि अकाली दल से हमारा बहुत ही पुराना अलायंस था और वो इस विषय पर चले गए, वो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ये जो बिफोर जीएसटी 14.5% का जो झोल था और जो अभी भी 8.5% का झोल है, इसको ग्रैब करने के लिए लोग हैं और वही लोग किसानों को समझा करके बुझा करके लाए हैं, जो केवल आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जितने लोग हैं आज प्रोटेस्ट में किसान, वो पंजाब से आए हैं। पहली बात, जहां कांग्रेस की सरकार है वो इसको राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ रही है। तो देश के किसान की जब बात करते हैं तो यूपी में भी केवल एक एरिया का किसान आ रहा है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस देश में अभी एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी का विरोध किसी भी चीज में करना है तो वो वर्ग आकर के वहां बैठ जाएगा। دیکھیں جتنی بھی جو یہ پالیسی بنی اے پی ایم سی یا مونوپولائزنگ آف منڈی, یہ اس زمانے کی بات ہے جب بھارت میں لوگ بھکمری سے مرتے تھے. یہ ساری باتیں جتنے بھی قانون ہیں یہ 60s کے ہیں. آج کے ڈیٹ میں اگر ہم کو جو فصل جو رکھنا ہے پورے سال بھر چلانے کے لیے اور جس سے کہ کبھی کوئی شارٹیج نہیں ہو, تو وہ قریب 42 ٹریلین ٹنز ہے اور ہمارے پاس آج رکھنے کو جگہ نہیں ہے. 92 ٹریلین ہمارے پاس ہے اور ایف سی آئی نے خرید کر کے رکھا ہوا ہے. آپ جو کام ابھی مونوپولائزنگ آف منڈی سے ہو رہا ہے, ایک بات بتائیے کون سا لبرلائزیشن پالیسی کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں لیفٹ کی بات سمجھتا ہوں, دیکھیے وہ جو ان کی راجنیتی ہے اس پر مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, اسی لیے وہ انڈیا میں ایگزٹ نہیں کرتے ہیں, وہ کہیں کہیں ایگزٹ کرتے ہیں, اس لیے لیفٹ کی بات میں سمجھتا ہوں. لیکن کانگریس پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ کسان ڈسٹرکٹ کے بغل والے ڈسٹرکٹ میں 2 کلومیٹر پر اگر اے پی ایم سی مارکیٹ ہے تو وہاں نہیں جائے, اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کر کے اپنے منڈی میں بیچے. ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کسان نہیں لے جا سکتا ہے لیکن دلال لے جا سکتا ہے. تو مجھے کانگریس پارٹی پہ بڑی مطلب, جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم ان سب کو ٹھیک کریں گے وہ اس کو ابھی ویروتھ کر رہے ہیں. جہاں تک انجان صاحب, میں سپریم کورٹ کا پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں, آپ کے ریڈیو شو پہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک بہت بڑی غلط بیانی کی ہے تو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا غلط بیانی کی کہ اس میں آپ کورٹ نہیں جا سکتے, ان کو لیگل نالج نہیں ہے. ایس ڈی ایم کے بعد اس کی اپیل کورٹ ہوتی ہے اور بھارت کا کوئی بھی ویکتی کسی بھی وشے پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانے کے لیے سوتنتر ہے. تو یہ کہنا کہ یہ اس میں ہائی کورٹ نہیں جا سکتے سپریم, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ایس ڈی ایم کی اپیل, اپیل کے بعد ہائی کورٹ, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جا سکتی ہے. چوتھی بات جو میرا کہنا ہے, جو آدمی ایس ڈی ایم کے پاس نہیں جا سکتا وہ کورٹ میں لائر کی فیس کیسے دے گا؟ میرے حساب سے اس قانون میں ایس ڈی ایم اس لیے رکھا گیا کہ ایس ڈی ایم ایک سرکاری پداधिकारी ہے, اس کا کام ہے اس جھگڑے کا نپٹارا کرنا. اور اس میں جو میکسیمم پاور ہے ایس ڈی ایم کا, وہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو کسان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لے سکتا. وہ زمین کے ساتھ اس کا کچھ نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ پروڈیوس پر ڈیسیجن دے سکتا ہے کہ پروڈیوس کس کا ہوگا. دیکھیں یہ جھوٹ پھیلا کر کے دیش میں ایک ورگ ہے جس کا کام ہے کہ ہر بات میں ویروھ کرنا, اور دوسرا لیفٹ جن کا کام ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ قانون سے پرابلم ہوئی تو دیش میں 1,00,000 سے زیادہ کسانوں نے آتم ہتیا کی. کون ذمہ وار ہے؟ آپ کا سنگٹھن تھا, قانون تو ابھی آیا نا. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی مونوپولائزنگ چلی, ان کی ٹریڈ یونین کی راجنیتی چلتی رہے, بھلے ہی کسان کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اب یہ کسان کو طے کرنا ہے کہ کسان, ابھی چناؤ ہوئے بہار میں تب بھی انہوں نے مدعا اٹھایا, ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو لے کر کے ہم جنتا کے بیچ جاتے ہیں اور جنتا سے لیتے ہیں. ابھی بنگال میں ہوگا, بنگال میں کیوں نہیں کسان پروٹیسٹ کر رہے؟ دیکھیے کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں اس کے بعد اپنی بات وانی کو وراہم دوں گا. پورے بہار میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کسانوں نے, وہاں جو لالو پرساد یادو جو ان کا بیٹا آج پردرشن کے لیے آیا, کسان نہیں آئے. میں مہاراشٹر میں آئیے, کوئی کسان نہیں آیا. اب ساری پارٹیاں گول بند ہو رہی ہے کہ کس پرکار سے اس کو ہم یہاں بھی فیول کریں. دیش میں ہریانہ میں کچھ کسان, پنجاب کے میکسیمم لوگ جو آئے ہیں, اور ویسٹرن یو پی کا ایک حصہ ہے جن کا کام ہے دلی میں سارے ڈسٹربینس میں ان کا پارٹیسپیشن ہے, جو دنگائیوں میں بھی ان کا پارٹیسپیشن. یہ لوگوں کو چھوڑ کر کے آپ مجھے بتائیے نا کہ دیش کے کس حصے میں, کیا تمل ناڈو میں کسان نہیں ہے, کیرلا میں کسان نہیں ہے, آندھر پردیش میں کسان نہیں ہے, تلنگانہ میں کسان نہیں ہے, کہ مدھیہ پردیش میں کسان نہیں ہے؟ سب سے بڑا مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اتنا بڑا کسان ہے, ان کی سرکار ہے, کہاں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ اب پروٹیسٹ کو مینوفیکچر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
میں اس کا جواب پانڈے جی لیتی ہوں, لیکن ایک سوال کا جواب ذرا آپ سے چاہوں گی کہ ہمارے جو مزدور کسانوں کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بات چیت چل رہی ہے حکومت, جو راؤنڈز کئی ہو چکے ہیں اس میں جو سرکار کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں 9 باتیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کیا جانا چاہیے.
دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات ہے, ہمارے سروچ نیتا پردھان منتری جی نے کئی بار پارلیمنٹ میں بھی کہا, باہر بھی کہا کہ ہم ایم ایس پی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, منیمم سپورٹ پرائس جاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ لکھ کے دو, آپ کی بات پہ ہمیں بھروسہ نہیں. اب ایسی جو کچھ بندو ہیں جو ہم کہیں نہیں رہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایم ایس پی کو ہٹانا ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا اے پی ایم سی مارکیٹ کو ہٹانا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اے پی ایم سی مل جائے گا, لیکن اس کی مونوپولائزنگ, جو آدمی اگر کسان کے پاس جا کر کے زیادہ پیسہ دے سکتا ہے تو اس کو زیادہ پیسہ, نہیں تو اے پی ایم سی رہے گا, ایم ایس پی رہے گا, منیمم سپورٹ پرائس کنٹینیو کرے گا. اور یہ اگر وہ کہہ رہے نہیں آپ لکھ کے دو, تو ان سب مدوں پر اگر کسان نے, دیکھیں کسان تو اس دیش کا کوئی بھی راجنیتک دل کسان کے ویروتھ میں نہیں جا سکتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ میری پارٹی ہو, پون کھیرا صاحب کی پارٹی ہو, اتل انجان صاحب کی پارٹی ہو, کسان کے ویروتھ میں جانے کی مطلب کوئی پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی ہے, کسانوں کا دیش ہے یہ. ابھی کیا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے, ابھی انہوں نے کہا کہ 91 کے بعد یہ ہو گیا, ہمیں لگ رہا ہے کہ 91 کی جو پالیسی تھی जिसका हमने भी समर्थन किया बाद में, अटल जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, अभी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उससे देश में गरीबी में कमी आई है, जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें पता है कि क्या हालत थी देश की, क्योंकि मैं 95 से दिल्ली में रह रहा हूं। तो उनकी पॉलिसी ही अलग है, हमारी हमारी सोच और समझ हमारी अलग है। हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। जितना खर्चा किसान के लिए काम किया गया और मजदूर के लिए काम किया गया, उसी का रिपरकशन है कि जब मई 2019 में चुनाव हुआ तो किसानों ने, मजदूरों ने नरेंद्र भाई मोदी को पहले से भी ज्यादा बहुमत दिया। इसके बाद बहुत सारे चुनाव हुए, आप देख लीजिए। रंजन साहब को लग रहा है कि उनकी पॉलिसी का बहुत जबरदस्त समर्थन है देश में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी चुनाव बंगाल में होंगे वहां जाइए, और नहीं तो 24 में तो पूरे देश का भी चुनाव होगा, वहां भी अपना टेस्ट करिए। जनता तक हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। फाइनली जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, वो जो कहेगी वो करना पड़ेगा, वो आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, पवन खेड़ा साहब को भी करना पड़ेगा। इस तीनों कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसान की कोई कोई दिक्कत हो सके।
एक टिप्पणी करना चाहूंगा, पवन खेड़ा बोल रहा हूँ मैं, पांडे जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, राजीव जी से, भारतीय किसान संघ क्यों इन कानूनों के खिलाफ है? ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है, आप उन्हें क्यों नहीं समझा पाए? इतना जवाब दे दीजिए कि भारतीय किसान संघ भी आज किसानों के साथ, आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा है, क्या वो भी मोदी जी के खिलाफ है? क्या वो भी मोदी जी को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है मोदी जी के खिलाफ?
मेरा ख्याल है कि ये सवाल हम अपने जो किसानों के नुमाइंदे हैं, उनके रहनुमा, उनसे करते हैं। मैं डॉक्टर मित्तल आपसे पहले तो ये पूछूंगी कि जो पांडे जी ने बात की कि इसमें ज्यादातर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पंजाब के किसान हैं, और बंगाल और बिहार और दूसरे कई इलाकों से कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो पहले तो ये कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, और अगर ऐसा है तो क्यों है, और उसके अलावा जो भी आप बाकी बातों का जवाब देना चाहें।
पंजाब के 2.5 लाख किसान दिल्ली हैं, और जत्थे आते चले जा रहे हैं। हरियाणा के बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, और यूपी के भी आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो सरकारी खरीद का फॉर्मूला था उसमें इन्हीं इलाकों में ज्यादातर खरीद होती थी, तो सीधी खरीद, सरकारी खरीद और एमएसपी से ये इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत का सवाल किसान केवल चुनावों से तय नहीं होता, जमहूरियत का सवाल आज दिल्ली की घेराबंदी से तय हो रहा है, और बीजेपी के नेता किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री किसान के मन की बात नहीं सुन रहे, आज ये बात सबके सामने है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया, अगर प्रधानमंत्री से ये बात कहेंगे वो, उन्होंने कहा कि हमारे पास गेहूं और चावल का आवश्यकता से 2.5 गुना ज्यादा ऑलरेडी भंडारण है, जाहिर बात है सरकार कितना खरीदेगी। ये बात जब वो कहते हैं हम एमएसपी और सरकारी खरीद बंद नहीं करने जा रहे हैं, तो ये बात प्रधानमंत्री से कहें कि हमारा असली तर्क है कि हम नहीं खरीदना चाह रहे हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खाना बहुत है, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, दुनिया के अंदर भूखे लोगों की जो सूची है, उसके 107 देशों में भारत हर साल नीचे गिरता जा रहा है। पिछले साल 88 पे था, इस साल 94 पे पहुंच गया है, श्रीलंका 66 पे है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत से ज्यादा अच्छे हैं, जबकि भारत कहता है हमारे पास खाना बहुत ज्यादा है, क्योंकि खाना जो है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भंडारण उसका नहीं होता है, खाना जो है खरीदा जाता है, फिर वो कंपनियों को और दूसरे कामों के लिए बेच दिया जाता है या सड़ा दिया जाता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 3.4% खेती का विकास दिखा रहे हैं और 7.5% बाकी कॉरपोरेट दुनिया के से नियंत्रित जो सीधा नियंत्रण है उसमें जो गिरावट आई है, अब सरकार चाहती है कि कॉरपोरेट खेती में घुस जाए ताकि खेती से कमाई करे। इन्होंने बताया कि ठेका खेती तो एक विकल्प है, किसान पढ़ा लिखा है उसको ना चुने, तो इसका मतलब है कि पुरानी व्यवस्था तो आप खुद ही कह रहे थे किसानों को राहत नहीं दे रही, संकट में है, और नई व्यवस्था आप कह रहे हैं कि अगर सब किसान चाहे तो ना चुने, तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं आप किसान के लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं दे रहे हैं। देश के अंदर एमएसपी के जो ये कह रहे हैं जारी रखेंगे, 700 रुपए क्विंटल पे मक्का बिक गई है जबकि 1760 रुपए क्विंटल थी। हम बताना चाहते हैं कि ये तीन कानून किसानों को खेतों से उजाड़ देंगे, इसी ने किसान यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने जीवन और जीविका की रक्षा के लिए हैं। जितनी जल्दी वो किसानों के मन की बात सुन लें और इस बात को पहचान लें कि जवाब देना होगा, उतना अच्छा है। क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते हैं।
अंजान साहब से पूछूंगी, एक तो ये बात कि जो पांडे जी ने बात कही थी कि ये कानून जो है वो 60s के हैं और अब इन्हें तब्दील करने की जरूरत है, ये अब फरसूदा हो चुके हैं, इसके बारे में। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ और जो बंद कर दी गई सरहदें, किसान बाहर बैठे हैं, और जब हिंदुस्तान बंद होने की बात की जा रही है और एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, तो उसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त भी ये जो है बहुत सी अशिया जो है, दूध, फल, सब्जी और कई अशिया दिल्ली में आना बंद हो गई हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इससे क्या एक आम सतह पर इस आंदोलन के खिलाफ जो है जज्बात पैदा नहीं होंगे?
मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्त पांडे जी के सवालों का जवाब दूंगा।
जी जरूर।
जो उन्होंने हमारे वकालत तो वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लेकिन मैंने भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से LLB फर्स्ट क्लास पास किया और LLM फर्स्ट क्लास पास किया, और मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आवाम की वकालत कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ अगर कोई भी मामला सरकार करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके लिए फ्री में मुकदमा उनकी तरफ से लड़ेगी। तो हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम तंजीमें हैं, तरक्की पसंद मुसन्नफीन हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर तरक्की पसंद जो तमाम बड़े बड़े नाटककार हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म की हस्तियां हैं, बड़े बड़े और भी तंजीमें हैं, वो सब तो आज खुल करके किसानों के साथ खड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि समर्थन नहीं है इस किसानों ने और मजदूरों ने 26 नवंबर को, 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन भारत हड़ताल किया था। सरकार की अर्थव्यवस्था के मंत्रालय ने कहा कि इस हड़ताल से 4,00,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन रुक गए, क्योंकि देश के सारे बैंक, LIC, GIC, पब्लिक सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब बंद था, और किसान भी उसके साथ थे। उन्होंने ग्रामीण भारत बंद का किया था, तो किसान और मजदूर एक साथ खड़े हुए हैं इस सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ। और आप ये समझ लीजिए कि खाली क्यों मजदूर खड़े हैं, मजदूरों की सारे डेमोक्रेटिक राइट्स, ट्रेड यूनियन राइट्स सब छीन लिए गए, खत्म कर दिए गए, पेंशन खत्म कर दी गई, कोविड के नाम पर डियरनेस अलाउंस मजदूरों के, सरकारी कर्मचारियों के सब रोक दिए गए। और क्या हो रहा है इस देश के अंदर, 10 तारीख को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नई पार्लियामेंट 40,000 करोड़ से बनवा रहे हैं, MPs के नए बंगले बन रहे हैं 10,000 करोड़ में। अरे इस मुल्क में जरूरी है क्या, पार्लियामेंट इतने शानदार है, कहीं टूट फूट हो गई इसको ठीक कर लो, नया पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। बंगाल में आप हर बार किस बात पर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में एक भी मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में क्या कहा कि हमारे ये 3 कानून जो हमने एग्रीकल्चर में पास किए हैं इस पर किसी ने चर्चा की, मुझे बता दीजिए कहीं किसी भाषण में कहा हो, लोग समझ रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी अपने वार्ड के नगर पालिकाओं के चुनाव में हार गए, जिला पंचायत हार गए, और अभी वहां उन्होंने मेयर को MLC का चुनाव लड़ाया अभी परसों, वो अभी हार गए। तो शुरुआत हो रही है। अभी हैदराबाद में जो आपके नेतागण गए थे भारतीय जनता पार्टी के, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, घर मंत्री, उनकी तकरीरें सुन लीजिए, और ये कहा जा रहा है अभी भी देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास किस्म के लोग आ रहे हैं। कितना आप कहेंगे कि खास किस्म के लोग आ रहे हैं, ये पद्म विभूषण, ये सरकारी सब वापस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज में कितने लोग हैं जिनके बेटे और जिनके बेटे फौज में हैं और जिनके माँ बाप और भाई बहन आज यहाँ दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, लाखों लोग हैं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वहां शादियों का माहौल है इसमें थोड़ा कम है। और मैं पूछ रहा हूँ ना, ठीक कहा कि APMC खत्म हो गई बिहार में, लेकिन बिहार में 800-900 रुपए मंडी नहीं है तो खरीदा जा रहा। आप कह रहे कि कहीं देश में बेचेंगे, दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम घट गए भाई साहब, जब मनमोहन सिंह जी थे तब $140 पर बैरल था कच्चा तेल, और याद है प्रधानमंत्री हमारे क्या कहते थे कि खुशकिस्मत लोग आते हैं तभी तो $40 पर बैरल कच्चे तेल का दाम हो गया। मनमोहन सिंह जी के जमाने में $140 पर बैरल और हिंदुस्तान में पेट्रोल बिकता था 70 रुपए, 71 रुपए पर लीटर, आज 42, 45, $50, $60 पर बैरल है कच्चे तेल का दाम दुनिया के बाजार में, तब भी हिंदुस्तान में 82 और 83 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल 70 रुपए बिक रहा है। पॉलिसी का सवाल, इसी GST का विरोध करते थे, पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेट पॉलिसी,
है। और मैं आखिर में एक बात ये कह सकता हूँ कि आप कह रहे हैं कि नियम कानून बहुत अच्छे हैं, तो लागू करने में ये क्यों स्वीकार कर रहे हो? और आप कह रहे हैं एसडीएम की कोर्ट में, अरे एसडीएम की कोर्ट में आप हमको थ्योरी समझा रहे हैं, ऊपर हम सीधे जाना चाहते हैं, हम हाईकोर्ट में रिट करना चाहते हैं, आप हाईकोर्ट में रिट करने की इजाजत ये कानून नहीं देते, आप कह रहे हैं एसडीएम से जाइए फिर नीचे ऊपर, ये किसको समझा रहे हैं?
मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए जाना चाहूंगी आप चारों के पास, लेकिन बहुत मुख्तसर है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी खेड़ा साहब कि कांग्रेस के एजेंडे के लिहाज से बताइए कि इस वक्त मसले को सुलझाने के लिए, इतराज करने के लिए नहीं बल्कि इस मसले को सुलझाने के लिए और इसको हल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई सियासी एजेंडा है जिससे किसानों के मसाइल को खत्म किया जा सके और उनके प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके?
शहनाज जी, जिन लोगों के लिए, जिस वर्ग के लिए ये कानून बने हैं, अगर उस वर्ग को ये कानून स्वीकार्य नहीं है तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी और क्या अतुल कुमार अंजान, हमारी औकात ही क्या है? हमारी कोई औकात नहीं है। किसान अगर इसको नो कहते हैं, नो मीन्स नो। और पांडे जी, आप यहाँ बैठकर फिर से एक गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि अब तक पुराने कानून के तहत किसान एपीएमसी के अलावा कहीं बेच ही नहीं सकता था। माफ कीजिएगा, ये गलत बयानी है। एपीएमसी के पुराने कानून में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसान कहीं और बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो ये गलत बयानी कम से कम यहाँ बैठकर मत कीजिए।
जी शुक्रिया। और इसी इख्तिसार के साथ अगर पांडे जी, राजीव पांडे जी, अब आप कुछ कहना चाहें, आप बीच में बात भी करना चाह रहे थे।
मैं दो बातें करके खत्म करूंगा। तो अंजान साहब ने बड़ी तकरीर की लेकिन उसमें किसान का कोई विषय नहीं था। उन्होंने ओवरऑल पॉलिटिक्स इंडिया में क्या हो रहा है, कह रहे हैं मजहब के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं, यानी ये जनता को गाली दे रहे हैं, इसलिए जनता ने इनको डस्टबिन में फेंक दिया। अब ये कहीं बचे नहीं है, ये हिंदुस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मैं इनको बताता हूँ कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जनवरी में चुनाव है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, भयानक रूप से हारेंगे, आपको मैं फोन करके बधाई दूंगा उसके लिए। अब तीसरी बात जो है ना, किसान ये बार बार कह रहे हैं कि किसान क्या हित में है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि उनके पास ऑप्शन है, वो पढ़े लिखे। मैंने क्या कहा कि अगर उनको लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मेरा नुकसान है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर मंडी से ज्यादा पहले भी बेच रहे थे और मंडी के सिवाय पहले भी बेच रहे थे तो इस कानून में नया क्या है? आप जो कह रहे हैं अभी तक है कि एपीएमसी में एमएसपी, वो जितनी चीजें आज एग्जिस्टिंग है वो सारी चीजें रहेंगी। साथ में जो हम चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, किसान को लगे कि किसी भी कॉरपोरेट से या कहीं से भी हमको किसी थर्ड पार्टी से अगर ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वहां बेचे, और नहीं तो जाकर के मंडी में बेचे। मंडी, जब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सब जगह से कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एपीएमसी खत्म नहीं होगा। अब बात चले कि लिख के दो, अब हो सकता है कि ये जो अभी चल रहा है डिस्कशन वो भी हो जाए। और बार बार, दो बार पवन खेड़ा साहब ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो किसान संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हमारे अपने लोग भी किसी बात में विरोध करते हैं, उनसे बात हो रही है और उनसे बात हो रही है। और किसान का विरोध, किसान के अगेंस्ट में जाकर के भारत में कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है। किसान से बात चल रही है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि किसानों के साथ सहमति बने और इस जो भी किसान जो कह रहे हैं कि हमको राइटिंग नहीं चाहिए, जो पॉसिबल है वो करके इस विषय का समाधान बहुत जल्द निकलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।
लेकिन आपको इसका इम्कान नजर नहीं आता कि इन कानूनों को खत्म कर दिया जाए जैसा कि किसानों का मुतालबा है?
मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनके कंफ्यूजन है, जो कह रहे हैं कि नहीं हमको लिख के चाहिए, ऐसे विषय पर जो कह रहे हैं, 8-9 पॉइंट्स पर बात चल रही है, उस पर बात होगी। क्योंकि कानून को मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है सरकार के लिए, मैं तो एक मामूली प्रवक्ता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसान से बात करके जो भी है उस पर एक कंक्लूजन पे पहुंच करके इस विषय का हल निकालेगी। सारे बड़े मंत्री और अभी प्रधानमंत्री जी से भी कल बात हो रही है,
बहुत शुक्रिया। और अब पहले डॉक्टर मित्तल, आप मुझे ये बताइए कि 8 को जो हिंदुस्तान बंद जो दिन मनाया जाएगा मंगल के दिन, तो उसमें कितना बड़ा होगा वो? और दूसरी बात ये कि इसके बारे में क्या आपको उम्मीद नजर आती है कि जो 9 तारीख को फिर मीटिंग होगी दोबारा 34 तंजीमों के दरमियान, उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी?
पहली बात तो 8 तारीख का बंद हिंदुस्तान के सारे प्रांतों में और सारे प्रमुख शहरों में और तमाम गांवों के अंदर होगा, उसकी भागीदारी का रूप और अलग अलग होगा अलग अलग स्तर पर। पर होगा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि पिछले सारे कार्यक्रम 25 सितंबर 5 अक्टूबर 5 नवंबर सब पूरे हिंदुस्तान भर में हुए। दूसरा ये सवाल 70 करोड़ किसानों का सवाल है, इनको खाना खाना होगा, इनको जीवन चलाना है, और सरकार के दोनों कानून साफ तौर पर कॉरपोरेट को लीगल राइट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि एपीएमसी में क्या था नहीं था, अब कॉरपोरेट को लीगल राइट मिल रहा है कि वो अपनी निजी मंडियां स्थापित करके खेती के हर क्षेत्र में, प्रसंस्करण में, फूड सिक्योरिटी पे, हर चीज पे हस्तक्षेप करे। सरकार चाहे जो भी सरकारी सिस्टम था हमारा जो बुरा था, उसकी बुराई के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को 91 से ही बढ़ाते चले गए, जिसमें कॉरपोरेट और विदेशी कंपनी का सेक्टर है। ये आत्मनिर्भर विकास और विदेशी कॉरपोरेट के विकास का सवाल फंस गया है। इसलिए सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो एक छोटी सेवा थी, ये पूरे जीवन के चलने का सवाल है, जमीन छीनने का सवाल है। इसीलिए किसानों ने साफ तौर पर कल की वार्ता में यस और नो में सरकार से जवाब मांगा है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, शांतिपूर्वक रूप से लोग बैठे हुए हैं और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बुआई का सीजन खत्म हो गया, पूरा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली को घेरने के लिए तैयार है। जो सब्जियों की और दिक्कत आप बता रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर सरकार मानेगी तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान का किसान जिएगा। जो एमएसपी और बाकी सवाल हैं जो अभी लंबित हैं, जिन पे अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों की मांग है कि रही है पुरानी की एमएसपी सारी फसलों का दिया जाए, वो एक गारंटी है सरकार के लिए। ई ट्रेडिंग और विदेशी कंपनियां और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो दुनिया के अनाज के ट्रेडिंग करते हैं 70% 80%, जो बहुत सस्ते में बेच सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ की खेती, यहाँ के गेहूं और धान के खरीद के रेट को बहुत ज्यादा गिरा सकते हैं, उससे किसान अगर मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर एक नया विकास होगा, जिसमें किसान की जेब में पैसा होगा, खरीदार के रूप में बाजार खड़ा होगा।
शुक्रिया अतुल कुमार अंजान साहब। अब आप मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि ये जो 9 तारीख को अब बातचीत होगी हुकूमत और 34 जो किसान तंजीमें हैं उनके दरमियान, उसमें क्या चीज मुख्तलिफ होगी उससे जो अब तक बात हुई है?
देखिए, एक तो मैं कहूँ कि 8 तारीख को जो 8 दिसंबर को भारत बंद है, ये एक नायाब किस्म का भारत बंद होगा, तो एहतजाज तो है बड़ा लंबा चौड़ा। और जहां तक सच और इंसाफ की बात है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, तो ये अंधेरे में तीर नहीं, ये सारा जो काम कर रही है सरकार हमारी, ये कारपोरेट घरानों के रास्ते पे कर रही है। आज तक सीट बिल नहीं पास होने दिया इस सरकार ने, 60,000 करोड़ रुपए की विदेशी कंपनियों का बीज भारत में होता है जो स्वदेशी का नारा लगता है। हमारा चीन से बड़ा झगड़ा है, और हमारी सरहदों पर और चीन के ऊपर कभी बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं है सरहदों के सवाल पर। लेकिन आपको मालूम है हमारे मुल्क में पिछले फरवरी के महीने से भारत की सरकार चीन को चावल बेच रही है, और जानते हैं क्या रुपए, हमारे मुल्क में मोटा चावल 40 रुपए किलो बिक रहा है और चीन को एक्सपोर्ट हो रहा है 22 रुपए किलो चावल। तो हमारे देश में ये है, प्रधानमंत्री जी बोलते थे हमारे 2014 में और उसके बाद, हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे। हम तो उसके मेंबर, हम तो उसके ड्राफ्टिंग आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर कहा है, इनके जो मरहूम नेता थी सुषमा स्वराज लीडर अपोजिशन ने क्या कहा है, सबसे शानदार रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन क्या हुआ, इसी पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि 201 सिफारिशों में से 200 सिफारिश मंत्री साहब बोल रहे थे कि स्वामीनाथन कमीशन के लागू हो गई, तो किसान क्यों सड़क पर आ गए भारत के किसानों के सवाल पर? और आज मैं कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन ने भी, उसके सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि किसानों के सवालों को हल करना चाहिए पीसफुल तरीके से। उन्होंने किसानों को भी नसीहत दी है और सरकारों से भी कहा है, तो आप इसको मत बोलिए। और भारतीय किसान संघ के बारे में कहना चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके दो दो राज्यों के किसान संघ के अध्यक्ष आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि रास्ता आसान नहीं होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से आखिर में आपकी इस बहस के जरिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि किसानों की बात को सुनिए।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप चारों मेहमानों का, जिस तहमुल से आपने एक दूसरे की बातें सुनी और एक दूसरे की बातों का जवाब दिया। तो पवन खेड़ा साहब, राजीव पांडे साहब, अतुल कुमार अंजान साहब और डॉक्टर आशीष मतिल, आप चारों का बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।
शुक्रिया,
बहुत बहुत
शुक्रिया।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
और सभी इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत भी दीजिए आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की। हमारा ये प्रोग्राम 27 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے